Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Amrish Saxena.
Namaskar. आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे. हमारे साथ प्रमुख खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार विशाल दहिया. विशाल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
धन्यवाद.
और हेडलाइंस के साथ मौजूद हैं अनुभा रोहतगी.
थैंक यू अमरीश. Benchmark domestic indices climb over 1%, Sensex closes above 76,300, Nifty gains over 280 points. Central banks of US, China and England keep their interest rates unchanged. And global crude oil prices edge up, Brent crude trades at $71.06 per barrel.
घरेलू शेयर बाजारों में 1% से अधिक का उछाल दर्ज किया गया. सेंसेक्स 76,300 अंकों पर बंद हुआ. निफ्टी में 280 अंकों की तेजी दिखाई दी. अमेरिका, चीन और इंग्लैंड की केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरों में बदलाव न करने की घोषणा की और कच्चे तेल के मूल्यों में बढ़त दिखाई दी. ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल का मूल्य $71.06 प्रति बैरल पर दर्ज किया गया. और सबसे पहले शेयर बाजार का हाल. घरेलू शेयर बाजार आज 1% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए. अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा इस वर्ष के लिए ब्याज दरों में कटौती के पूर्व अनुमान को बहाल रखने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से आए सकारात्मक संकेत और घरेलू शेयर बाजारों में चौतरफा खरीदारी के चलते सूचकांकों में तेजी दिखाई दी. 30 शेयरों पर आधारित बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 899 अंक यानी 1.19% की बढ़त के साथ 76,348 अंकों पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 283 अंक यानी 1.24% की तेजी के साथ 23,191 अंकों पर जा पहुंचा. बंबई शेयर बाजार के व्यापक बाजार ने भी अच्छा प्रदर्शन किया. मिड कैप सूचकांक 0.6% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.7% बढ़ा.
The benchmark domestic equity indices today ended with gains of over 1%, boosted by buying across all sectors and positive global cues after the US Federal Reserve upheld its rate cut projection for the year. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange, Sensex, climbed 899 points or 1.19% to close at 76,348. The National Stock Exchange Nifty 50 rose 283 points or 1.24% to settle at 23,191. The broader market indices at the BSE also ended in positive territory. The mid-cap index advanced over 0.6% and the small-cap index gained over 0.7%. In the Sensex index, 27 out of 30 companies ended in positive territory. Among the top gainers, Bharti Airtel jumped over 4.1%, Titan gained over 3.8%, and TCS increased more than 1.8%. Conversely, among the top laggards, IndusInd Bank dropped over 1.2%, Bajaj Finance slipped over 0.6%, and Ultra Tech Cement lost 0.15%. In sectoral indices at the BSE, all 21 sectors ended in green territory. In the top gainers, telecommunication gained over 1.9%, tech rose almost 1.9%, and oil and gas added more than 1.5%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,110 companies advanced, shares of 1,606 companies declined, and shares of 129 companies remained unchanged. At the National Stock Exchange, 35 companies hit their 52-week high, while 59 hit their 52-week low.
और विदेशी मुद्रा बाजार में आज रुपया 6 पैसे मजबूत हुआ. घरेलू शेयर बाजारों में सकारात्मक संकेतों के बीच एक डॉलर की कीमत 86.37 रुपए दर्ज की गई. विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमरीकी डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतरदिवसीय कारोबार में 103.92 पर दर्ज किया गया. विशाल जी, शेयर बाजारों में जिस जो जो बढ़त आज हमने देखी और जितना पॉजिटिव एक सेंटिमेंट दिखाई दिया, तो क्या ऐसे प्रमुख कारण हैं जिन्होंने बाजार को आगे बढ़ाया?
देखिए अमरीश जी, बहुत ही जैसे मैं कहूँगा कि उत्साहजनक स्थिति है बाजार की लगभग पिछले 2 दिन से. और जहाँ तक कारणों की बात है, तो पिछले 5 मिनट में आपने और अनुभा जी ने जो जो बताया है उसमें कारण सब आप लोगों ने गिना दिए. मैं केवल उनको मोटे तौर पर चिन्हित कर देता हूं. सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जो यूएस फेडरल रिजर्व बैंक है, उसने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का जो दूसरी घोषणा इस साल के लिए की, उसमें उन्होंने रेट्स को अनचेंज्ड रखा है. लेकिन एक महत्वपूर्ण बात उनकी तरफ से कही गई, और महत्वपूर्ण बात यह कही गई कि इस साल के अंत तक कम से कम 2 बार जो इंटरेस्ट रेट हैं उनमें कटौती फेडरल रिजर्व कर सकता है. तो ये एक उत्साहवर्धक बात है, नंबर एक, ना केवल अमेरिका के बाजारों के लिए बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी, और खासतौर पे ऐसे समय में जब जिसे हम टैरिफ वॉर कह रहे हैं
जी,
वो अपने लगभग चरम सीमा पर तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन पूरे जोरों शोरों पर चल रही है. दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बॉन्ड यील्ड है, यूएस बॉन्ड यील्ड, अगर 10 साल की यील्ड पे भी नजर डाली जाए और 2 साल की बॉन्ड यील्ड पे भी नजर डाली जाए, दोनों में भारी गिरावट है. अब तीसरा जो कारण है वो ये है कि जो डॉलर इंडेक्स है उसमें भी एक भारी गिरावट है. अगर मैं गलत नहीं हूं तो डॉलर इंडेक्स शायद 103 के आसपास है
जी, जी,
जी.
जिस वजह से रुपए में भी मजबूती और उछाल देखा जा रहा है पिछले 2 दिन से. तो इन सब का निष्कर्ष क्या निकलता है कि वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर FIIs जो के पिछले लगभग 2-3 महीने से लगातार बिकवाली कर रहे थे और पैसा अपना निकाल रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद अमेरिकी बाजार में निवेश करना फायदेमंद रहेगा, या शायद कहीं और किसी यूरोपियन बाजार में या एशियाई बाजार में निवेश करना फायदेमंद रहेगा. अब उनकी आउटलुक में बदलाव हुआ है और उनकी वापसी मैं पूरे तरीके से तो नहीं कहूंगा, लेकिन धीरे धीरे होनी शुरू हुई है. रही बात अब भारतीय बाजारों की, जो दूसरा पहिया जिसे कहा जाए DIIs यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनकी जो इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी है या उनकी जो गति है वो लगातार बदस्तूर जारी है, उसमें कोई कमी आई नहीं है. तो इसलिए पिछले 2 दिनों में जो बदलाव हमें देखने को मिल रहा है कि एक पहिया गाड़ी का जो थोड़ा सा कहीं अटक गया था वो उस गड्ढे से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसने भी दूसरे पहिए के साथ एक बार फिर से तालमेल, यानी कि FIIs और DIIs का एक तालमेल बना है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखा जाए. तो इसका सीधा असर भारतीय बाजारों पर पड़ता दिख रहा है, और जिस वजह से अगर आप देखें आज की अगर हम बात करें तो आज जो उछाल आया बाजार में उसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो IT स्टॉक्स का रहा है. और IT स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन इसलिए रहा है कि अमेरिकी बाजार में और अमेरिकी अर्थव्यवस्था से जो संकेत आ रहे हैं उनका सीधा सीधा असर इन IT कंपनियों पर होता है, क्योंकि इनकी ज्यादातर मार्केट, ज्यादातर जो ऑर्डर बुक जिसे कहा जाए वो वहां है.
The biggest or factor is the US Fed's decision that came out yesterday. But is there also a China factor here? The fact that China has, you know, intensified efforts to spur domestic demands. China has also, you know, and there is optimism now. Basically, there's an optimism over the economic outlook of China. So do you think that is also a factor?
Well, what China does in terms of, you know, taking positive steps towards improving its economic health. And let's not forget that China's economy has been in sort of an doldrums, I would say, not very, you know, in the pink of its health for quite some years now. We have seen the Chinese housing crisis as well. Their projected GDP growth rates have not been met. met for last few years. Inflation is a cause of concern yes. for them as well. But whatever China does, that brings a stability in the markets as a whole to the Asian region.
Okay.
For us, for India, it becomes they become a much stronger competitor because then they become a lucrative investment destination for the FIIs.
Exactly.
So, but for the larger picture, if you look yes. at the larger picture, it is always good because, you know, no economy works in isolation, especially these days. And of course, the stock markets never work in isolation. There is bound to be an impact of external factors. For example, we are seeing the rise now. We saw the fall as well earlier to a great extent. So it's like, you know, the external factors would contribute a lot. So as far as China is concerned, I would say, you know, we can look at it like whether the glass is half empty or half right. full in both terms.
And talking about factors, okay, you know, right now we're talking about the economic factors. But do you think at some level, even geopolitical factors are also playing a role because President Trump, U.S. President Trump yesterday spoke to President Putin of Russia. He spoke to Zelensky, President, Zelensky of Ukraine. So, and, you know, there's some now people are hoping, you know, that there could be, and there was some decisions that came out of those meetings. So do you think that is also playing a part?
Well, that will be really crucial from the crude oil point of view, because in the oil markets, yes. you know, there'll be a very significant impact on the outcome of the entire efforts to, you know, bring about peace in that region between Russia and Ukraine. That is one part, and it'll give some respite to the European economies as well. So, of course, if that happens, the European economies and the European stock markets, which have been reeling under this pressure for almost 2 years now, yes. if I'm not wrong, they'll start feeling, you know, a little relaxed. And that impact will again, you know, trickle down to other markets, Asian markets as well. But I would say that apart from that, another significant, you know, issue as far as investors is concerned, investor sentiment is concerned.
Yes.
Say around 3 months ago, for investor sentiment to be, you know, really good or on the higher side was the idea of finding a solution to geopolitical issues like the Russia-Ukraine yes. War, to issues like, you know, Israel-Hamas war, or maybe United States conflict with Iran and all, that they should not escalate beyond a point and things should be in control. But in the past 50, 60 odd days, there is one more significant mm-hmm. thing which has come on investors' mind. You know, it has come to their plate uninvited. That is the tariff issue.
Yes.
So the tariff issue will still continue to be, you know, the elephant in the room. It will have to be addressed by all stakeholders and in a positive manner. But having said that, you know, it doesn't take away the positive impact of a solution, if at all found, for the Russia-Ukraine conflict. Sooner it is done, the better it is for everybody.
लेकिन विशाल जी, जैसे आपने FIIs का जिक्र किया कि पिछले दो तीन महीनों से जो गिरावट है, तो काफी हद तक वो FIIs के पैसा निकालने की वजह से है. तो इसका क्या हम ये अर्थ निकालें कि हमारे fundamentals कितने भी मजबूत हों, लेकिन FIIs ही determine करेंगे कि बाजार stable रहेगा, नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा?
नहीं, बिल्कुल नहीं. अमरीश जी, मैं यहाँ आपसे पूर्णतया असहमत रहूंगा. FIIs एक फैक्टर है
जी.
बाजार में गिरावट जो हमें देखने को मिली, उसमें भी FII एक फैक्टर थे. दूसरा फैक्टर जो महत्वपूर्ण एनालिस्ट के मुताबिक था, वो था कुछ स्टॉक्स का जो है ओवर वैल्यूएशन भी होना. तीसरा फैक्टर जिसे बताया गया, वो था कि इन्वेस्टर्स जो है उम्मीद कर रहे थे कई फैसलों की, कई डेटा की, कि वो किस तरह के डेटा आते हैं, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी क्या कहती है, इन्फ्लेशन का डेटा क्या कहता है, इंडस्ट्रियल आउटपुट का डेटा क्या कहता है, और यूएस फेड ने जो अब अनाउंस किया है, इससे पहले क्वार्टर में भी जो अनाउंस किया तब भी जो, तो वो एक एंटिसिपेशन बनता है. और अगर एंटिसिपेशन के समय पे बाकी चीजें पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रही हैं, तो उसे हम पॉजिटिव एंटिसिपेशन मान लेते हैं. और अगर बाकी कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर थोड़ा सा नेगेटिव साइड की तरफ जा रहे हैं, तो फिर वो एंटिसिपेशन नेगेटिव होता लगता है. तो इस वजह से FII जो है एक फैक्टर जरूर है. FII कभी जब अपने प्ले पे आता है, तो अगर वो बिकवाली पे उतरा, तो शायद एक फौरी झटका देखने को मिले मार्केट में, लेकिन उससे ज्यादा नहीं मिलेगा.
एंड लाइक यू योरसेल्फ हैव सेड दैट यू नो देयर इज दैट द अदर व्हील इज द DIS,
इज द DIS,
दे हैव बीन यू नो एक्टिंग एज द बैलेंसर सो टू स्पीक ऑल दिस व्हाइल.
एग्जैक्टली, दैट शोज दैट द फंडामेंटल्स आर प्रीटी मच स्ट्रांग. अदरवाइज यू नो द काइंड ऑफ सेलिंग व्हिच हैज बीन डन बाय FIIs इन द पास्ट 4-5 मंथ्स, इफ द फंडामेंटल्स वुड नॉट हैव बीन दैट स्ट्रांग एज दे आर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड the regulatory part in the Indian stock markets, then I'm sure it would have gone in a huge tailspin. If it would have been any other economy, you know, and this huge movement of FIIs and all, but Indian markets are taking it in its stride, you know.
Yes.
And the domestic investors' confidence also shows, because ultimately, be it foreign or domestic investors, Amrish ji, paisa lagane wala videshi ho ya deshi ho, wo evaluation aur दिमाग तो अपना उतना ही लगाएगा, और पैसा तो सबको सोच समझ के ही लगाना होता है, तो वो सोच समझ के लगाएंगे. यानी कि अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की कॉन्फिडेंस है मार्केट में, तो वो दर्शाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था के जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो अभी भी उतने ही मजबूत हैं.
टॉकिंग अबाउट द सेक्टर्स विशाल, टुडे वी सॉ दैट ऑल 21 सेक्टर्स हैव एंडेड इन ग्रीन टेरिटरी, बट इफ यू वर टू पिक मूविंग फॉरवर्ड, यू नो इफ यू वर टू पिक one or two sectors that are likely to perform better than the others, what would those, which ones would those be?
Well, you know, if you look at a sort of a longish outcome, you know, I wouldn't say very long term, but sort of a mid-ish long term, I would want to call it towards the end of this year or maybe end of the financial year and all, I see a bit of a potential as far as auto sector is concerned, mm-hmm. because the sector has been down for quite some time,
yes.
you know, there has been some spurts which we've seen in between, but there is a potential. So that is one. Two, if you juxtapose whatever is happening in the market with the government's, Indian government's policies and the budget announcements mm-hmm. as well, then there seemingly is a lot of scope in the defense sector.
Yes.
A lot of scope in the space sector. Mm-hmm. Manufacturing is again one area where I believe it is not exploited its full potential.
Mm-hmm.
Infra is another huge push, because the reason why I'm a little bullish on infra would be because the government has left no stone unturned for the past 4-5 budget announcements,
yes.
to give that huge push to the infra sector.
Yes.
The private sector, as far as infra is concerned, I would say is yet to live up to the expectations in terms of matching.
It has to pull its weight.
Yeah,
now.
Matching the the way the government is moving ahead. So if that happens, then again that will be a wonderful thing.
All right, moving ahead, let's see how the U.S. markets behaved yesterday. U.S. stocks rose on Wednesday after the Federal Reserve kept its benchmark overnight interest rate unchanged in the 4.25% to 4.5% range, indicating that 2/4-point interest rate cuts were likely later this year, the same median forecast as 3 months ago. The Nasdaq Composite gained over 1.4%, S&P 500 rose over 1%, and the Dow Jones Industrial Average added over 0.9%. Meanwhile, the Fed also forecast slower economic growth and higher inflation, citing risks from U.S. President Donald Trump's tariff policies. Officials now expect the economy to grow at 1.7% pace this year, down 0.4 percentage points from the previous projection in December. They also expect their preferred measure of inflation to stand at 2.7% at the end of this year, up from 2.5% anticipated in December. The central bank's second monetary policy decision of 2025 comes amid stagflation risks fueled by U.S. President Donald Trump's tariff hikes, which escalated a global trade war. The Federal Reserve took a wait-and-see approach to an uncertain economy, opting to leave interest rates unchanged at the close of its March meeting. Fed Chair Jerome Powell told a news conference that they are not in a hurry to adjust policy stance and are well-positioned to wait for greater clarity. Vishal, we have already discussed, you know, the U.S. Fed's decision to keep the interest rate unchanged. But what's more interesting here is the commentary that has come out, because it has forecast a slower economic growth and higher inflation. How much of a impact will it have? And because earlier, if you remember, even the U.S. administration has not ruled out the R word as yet, right? So what, how would you see this commentary?
Well, this shows the pragmatic approach being taken by the US Fed. They're not shying away from, you know, accepting the fact that perhaps the US economy is not at its best right now. And they're also not shying away from the fact that, you know, the decisions which have been taken by President Trump as far as tariffs are concerned might have a bit more significant impact on the health of the US economy, yes, than perhaps the planners would have, you know, anticipated in the initial stages. Also, this should not take away the fact that it's a sort of a restart, mm-hmm, which perhaps, you know, President Trump is looking for in terms of the U.S. economic situation. Otherwise, taking these huge decisions vis-a-vis the entire tariff structure, taking decisions vis-a-vis the U.S. Spending, the domestic spending as well. So it looks like the Trump administration is pressing the reset button. So, mm-hmm, whenever you press the reset button, and specifically if it is to do with the economy, then of course there are downsides as well. So the U.S. Fed is basically indicating that be cautious. Mm-hmm. We are also adopting a cautious approach here. We know that the economy might not grow at a pace which it was at last year. Inflation might also be a cause of concern. But they're also indicating that if required, by the end of this year, they might come up with, you know, rate cuts, at least if not if not twice, then at least once. And that is sort of trying to build that confidence, mm-hmm, in the domestic investors in the U.S. economy. That seemed to be the idea right now, that domestic investors in the U.S. economy should have that faith in their own structure, because, mm-hmm, that is what is required. Yes. There'll be a lot more decisions which will come out. It has, right, just been 60 days of President, yes, Trump. And, it's a long way to go. So perhaps all of us should buckle down for a roller coaster ride.
And since we're talking about the US Fed decision, you know, that RBI's, our own central bank, RBI's MPC meeting is next month. So what are your expectations, or is it too early to speak about that? Because, you know, when we look at Indian economy, that there are, I mean, amid even the global uncertainty which is happening, you know, there are still, the Indian economy still, you know, it's growing at a stable pace. The GDP growth figures are stable. There are lower inflation. So how much would those factors affect the RBI's decision so far as the rate cuts are concerned?
Well, I would say if you look at the decisions which have been taken in the past few years by Indian Central Bank, that is RBI, vis-a-vis other central banks' decisions and the health of other economies as well, I would say Indian Reserve Bank's approach has been very mature, mm-hmm, very pragmatic. And it has been in tandem with what the government's plans have been. That is what is required, both for the central government and the central bank to work in tandem with each other. There'll be a bit of an elbow room for the Reserve Bank moving forward, because the inflation data is in a very comfort zone, yes, right now. It's even below the 4% range.
Yes.
And that should, have some smiles in the Reserve Bank of India's office and its management. Second important aspect is the other data set which are coming out in terms of, industrial output, manufacturing. More significantly, the employment data as well. The employment data is also a very positive indicator. And if you take them up all together, all these factors, then perhaps, although I would call it a bit early to make any remark on that, but I've always been very hopeful that if everything is going mm-hmm, as per the expectations of the RBI, we might expect some more relief from the central bank this time around.
Right.
Aur Asia ke bazaaron ka hal bhi jaan lete hain. Asia ke pramukh bazaaron mein aaj mila jula rukh raha. हांगकांग शेयर बाजार का हैंग सेंग इंडेक्स 2.2% से अधिक गिरा. चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में गिरावट 0.5% से अधिक की रही. दूसरी ओर सिंगापुर का स्टेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.5% से अधिक और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.3% से अधिक बढ़ा. इस बीच जापान में बाजार अवकाश के चलते बंद रहे। इससे पहले पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने अपनी बेंचमार्क ऋण दरों को लगातार पांचवें महीने में उसी स्तर पर बनाए रखा। बैंक ने एक वर्ष की प्राइम ऋण दरों LPR को 3.1% और 5 वर्ष के लिए LPR को 3.6% पर बनाए रखने की घोषणा की। यूरोप के प्रमुख शेयर बाजारों में गिरावट दिखाई दी। जर्मनी का डैक्स 1.3% से अधिक गिरा। उधर कैक में गिरावट लगभग 1% की रही। अंतिम समाचार मिलने तक लंदन के फुटसी में भी 0.12% की गिरावट दर्ज की गई। इस बीच बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्याज दरों को 4.5% पर बनाए रखा। विश्वव्यापी अनिश्चितता और मुद्रास्फीति के ऊंचे स्तर को लेकर जारी चिंता के बीच बैंक ने यह निर्णय लिया। विशाल जी, हम देख रहे हैं अमेरिका की, चीन, इंग्लैंड, सभी की सेंट्रल बैंकों ने ब्याज दरों को उसी स्तर पर बनाए रखा है। इनके पीछे आपको क्या कनेक्शन दिखाई देता है?
अमृत जी, सीधा सा कनेक्शन है कि सब वेट एंड वॉच सिचुएशन में है, क्योंकि खासतौर पर अमेरिका और चीन की तरफ निगाह डालें तो ये दो देश ऐसे हैं जो कि टैरिफ के चलते जो है सीधे सामने एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं। अब क्या वार और पलटवार होता है उसका इंतजार हो रहा है, और शायद जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने फैसला किया हो कि पहले सरकारें फैसला ले लें उसके बाद हम अपना फैसला लेंगे, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स के लिए बहुत ही लॉन्ग टर्म अप्रोच रखना जरूरी है। वो मिड टर्म या शॉर्ट टर्म अप्रोच रख के चलेंगे तो शायद इकोनॉमीज के लिए उतना बेहतर नहीं।
जी, और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में इस वर्ष जनवरी में 17,89,000 सदस्य शामिल हुए हैं। ये दिसंबर 2024 की तुलना में कुल सदस्यों में 11.48% की वृद्धि है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इस वृद्धि का श्रेय रोजगार के बढ़ते अवसरों, कर्मचारी लाभों के बारे में बढ़ती जागरूकता और संगठन की प्रभावी जनसंपर्क पहलों को दिया है।
Moving on, the estimated unemployment rate in the country has decreased from 6% during 2017-18 to 3.2% in 2023-24. In a written reply in Rajya Sabha, Minister of State for Labour and Employment Shobha Karandlaje said employment in the manufacturing sector has increased from 6.1 crore in 2021-22 to 6.3 crore in 2022-23, indicating an increase of over 20 lakh during this period. You were talking about the employment, you know, earlier. We've just got the employment rate. A quick comment on this, that it has decreased about 6% in a period of about 6 years.
That, again, I was pointing out, you know, very significant improvement. And this data set is something which weighs very heavily on the mind of the central bank, you know, management as well. That is the RBI's MPC, because they not only look at just the inflation data or the growth data, they also look at all other contributing factors. You know, what is happening in the manufacturing sector, what is happening in the industrial output as well, the agriculture sector, and more specifically the employment data. Right. And the EPFO numbers shows that this increase is gradual. Mm-hmm. It's happening on a month-on-month basis. The larger picture, which you pointed out, in terms of comparison between 2017 to 2023, that gives us a larger picture. But how did we arrive there? That is a month-on-month progress, right, which is happening.
Let's move on to commodities. Oil prices rose today, supported by a strong outlook for demand in the United States after fuel inventories fell more than expected. Brent crude was trading 0.4% up at $71.06 per barrel. WTI crude was trading over 0.4% up at $67.44 per barrel when reports last came in. Meanwhile, Energy Information Administration data showed a higher than expected drawdown last week in distillate inventories, including diesel and heating oil, which fell by 2.8 million barrels.
और सराफा बाजार में सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.04% बढ़कर 89,020 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहीं चांदी 0.64% गिरकर 99,000 ₹500 प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज की गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक अप्रैल 2025 में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य 0.04% बढ़कर ₹88,640 प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। विशाल जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और प्रमुख खबरों पर चर्चा के लिए आपका धन्यवाद।
धन्यवाद अमरीश जी, थैंक यू अनुभव।
Before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices climb over 1%. Sensex closes above 76,300. Nifty gains over 280 points. Central banks of US, China and England keep their interest rates unchanged. And global crude oil prices edge up. Brent crude trades at $71.06 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. Do remember to join us at the same time tomorrow. Till then, goodbye. Namaskar. Market Mantra.